पुस्तक छठवी लेक्चर नंबर 18। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोए सौवसाऊणम् णमयूणनन्तजिणम् अनन्तनाणेन दिट्ठसौवट्ठम् कम्मपदे सविहत्तिम् वोच्छामि जहागमं पयनो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुड़ तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। छठवीं पुस्तक जो प्रदेश विभक्ति नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 129 पर आ गए। 129 लास्ट लाइन चलेगी। अभी यहाँ अभी क्षपित कर्मांशिक जीव का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि हमें जघन्य प्रदेश विभक्ति किसके होती है इसकी बात चल रही है। तो क्षपित कर्मांशिक हो या गुणित कर्मांशिक, ये जो छह प्रकार के आवास यानी आवश्यक कारण बताए हैं, उसमें भवावास, अद्धावास, योगावास, आयु रूप आवास, अपकर्षण उत्कर्षण रूप आवास और संक्लेश रूप आवास, ये छह आवश्यक कारणों के द्वारा। तो यहाँ क्षपित कर्मांशिक में बताया था कि सूक्ष्म निगोध पर्याय में, अपर्याप्त में नहीं कहा, पर्याय में, सूक्ष्म निगोध पर्याय में यह जीव कर्म स्थिति प्रमाण काल तक रहा। तो उसमें क्या क्या बातें होती वो सब बता चुके। और अभव्य के योग्य जघन्य में, जघन्य जो प्रदेश सत्कर्म होता है उतना होकर वो त्रस में जन्मा है, ऐसा जीव लिया था। और फिर उसमें बहुत बार संयमासंयम, सम्यक्त्व, अनंत अनुबंधी की विसंजना, संयम सभी ग्रहण किए उसने, चार बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा। तो ये क्यों? तो उसमें कर्मों की निर्जरा अधिक होती है। इसी को बताने के लिए उन्होंने जो 10 या 11 जिसको स्थान कहते हैं, असंख्यात गुणा निर्जरा के, उसको बताया था। पहले में सम्यक्त्व की उत्पत्ति, फिर श्रावक, उसके बाद संयमास संयम, उसके बाद अनंतानुबंधी की विसंयोजना, दर्शन मोनी की क्षपणा, फिर उपशमक, हाँ उपशम श्रेणी, और फिर 11वां गुणस्थान वाला, फिर क्षपक श्रेणी, फिर 12वां वाला, और फिर जिन, जिनेन्द्र भगवान में भी दो बताए, सामान्य केवली और समुद्घात केवली, सामान्य कहेंगे या स्वस्थान केवली कहेंगे। तो ये गुण श्रेणी निर्जरा, असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा होती है इन सभी में, और उल्टे क्रम से गुण श्रेणी का आयाम, उसका काल संख्यात गुणा होता है उल्टे क्रम से गुणा होता है, गुण श्रेणी का आयाम यानी गुण श्रेणी का काल जिसको कहने में आता है। यही बात हमने विशेषार्थ में भी पढ़ी थी।
अब ये आयाम है वो सबूतघात में और केवली में तो समान ही होगा ना?
नहीं, आयाम और छोटा होगा, तभी तो असंख्यात गुणा निर्जरा होगा।
वहाँ पे तो विशुद्धि का तो कोई कारण नहीं है, वहाँ पे विशुद्धि तक को बढ़ोतरी होती नहीं है।
विशुद्धि की बढ़ोतरी नहीं होती है, फिर भी सहज ही ऐसा होता है कि समुद्घात के कारण तो विशुद्धि नहीं बढ़ी, तो गुण श्रेणी का प्रमाण क्यों बढ़ा?
योग का
अभी उनके जो प्रदेश पूरे फैल गए है, उस कारण जो कोई यथा योग्य वहाँ बातें होती है, क्योंकि समुद्घात होते तो भी अन्य अन्य करण भी वहां भी होते हैं, नहीं वहाँ भी कुछ विशेष करण होते हैं ना, समुद्घात के समुद्घात होता है, हमने पहले पढ़ा था। जैसे नवे गुणस्थान में इतने सारे करण बताए, करण ने अलग अलग प्रोसेसेस विधान, वैसे वहाँ भी होते हैं। इस प्रकार नीचे की लाइन, लास्ट लाइन, तिर्यंच और मनुष्यों में गुण श्रेणी को करके, यह उन्होंने बताया था ना कि बहुत बार सम्यक्त्व संयम और संयमा संयम को ग्रहण किया, अनंतानुबंधी के विसंयोज भी असंख्यात बार किया या अनेक बार किया, और फिर चार बार उपशम श्रेणी चढ़कर उतरा और फिर 132 सागर तक सम्यक्त्व में घूमा। अब इस प्रकार से तिर्यंच और मनुष्यों में गुण श्रेणी को करके, तिर्यंच और मनुष्यों में क्यों कहा, अधिक से अधिक संयम संयमा संयम तो तिर्यंच मनुष्यों में है, बीच बीच में देवों के भव भी हो गए, अन्यत्र भी होगा, वहां भी सम्यक्त्व अनंतानुबंधी की विसंयोजन अधिकार्य वहां भी हो गए। इस प्रकार से तिर्यंच और मनुष्यों में गुण श्रेणी को करके, यानी गुण श्रेणी निर्जरा करके, फिर 10,000 वर्ष की आयु वाले देवों में उत्पन्न होकर, अब ये बार बार मिथ्या तो में ही जाएगा तभी तो इतने बार सम्यक तो प्राप्त करेगा। अब 10,000 वर्ष की आयु वाले कहाँ, भवनत्रिक में ही हो गए, तो मिथ्या के साथ गया है। फिर आगमानुसार, आगमानुसार का अर्थ क्या है, देवों में से कोई डायरेक्ट सूक्ष्म एकेंद्रिय में नहीं जाएगा, तो वहां से मनुष्य तिर्यंच होगा और फिर पश्चात सूक्ष्म में चला जाएगा, क्योंकि देवों को सूक्ष्म अपर्याप्त वगैरह का बंधन ही होता, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त का, सूक्ष्म साधारण और अपर्याप्त तीनों का ही बंधन ही होता। आगमानुसार सूक्ष्म एकेंद्रियों में उत्पन्न होकर वहां पल्ले के असंख्यातवे भाग काल को बिताकर, क्योंकि पल्ले के असंख्यातवे भाग में फिर स्थिति कांडक वगैरह हो गए, फिर आगमानुसार उसे मनुष्यों में उत्पन्न कराना चाहिए, यह भी आगमानुसार जो बताया है, क्योंकि उसका कारण आगे बताएंगे, आगे विशेषार्थ में आने वाला है। ये सीधा मनुष्य में उत्पन्न होगा सूक्ष्म निगोद से, तो सम्यक तो संयमा संयम तो होता है, संयम नहीं होता उसके। हाँ, हमने तो बादर निगोद में से निकलकर मोक्ष भी जा सकता है, वो देखा था। तो इसलिए आगमानुसार कहा उसे मनुष्यों में उत्पन्न कराना चाहिए। इस प्रकार 130 पृष्ठ पर चल रही बात, पल्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण परिभ्रमण शलाकाओं के बीतने पर, यानी इतने बार पल्य के असंख्यातवे भाग बार इतने परिभ्रमण करके, यानी बारंबार वो सम्यक्तादि प्राप्त करेगा, देवों में जाएगा, सूक्ष्म में जाएगा, फिर त्रसों में आएगा, इस तरह से बारंबार करने पर पीछे उसे आय के बिना स्थिति में अधस्थिति गलना के द्वारा गोपुच्छों की निर्जरा कराने के लिए 266 सागर तक परिभ्रमण कराना चाहिए। आय के बिना गलना का अर्थ क्या है, बांधता नहीं, किस कर्म की बात चल रही, मिथ्यात्व की। 266 सागर तक सम्यक दृष्टि रहा तो जितने निषेक है एक एक तो गलेगा ही गलेगा, परंतु अभी वहां नया बंध नहीं होगा, तो 266 सागर तक अधस्थिति गलना होगी, एक एक निषेक चला जाएगा। लिखा ना आय के बिना, क्योंकि हम मिथ्यात्व का बंध नहीं है, स्थिति में अधस्थिति गलना के द्वारा गोपुच्छों की निर्जरा कराने के लिए, क्योंकि सम्यक्त्व चालू है ना इसका, सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व का बंधन नहीं है, इसे आय नहीं वहां पर। तो इसलिए 66 सागर तक परिभ्रमण कराना चाहिए। शंका। उसके बाद दर्शन मुनि का क्षपण करता ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हमें तो मिथ्यात्व का जघन्य द्रव्य कब होता है उसको देखना है। तो जब क्षपणा करेगा तो सारे का सारा मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति रूप संक्रमित हो जाएगा। समाधान, दर्शन मुख की क्षपणा के बिना मिथ्यात्व का अंतिम स्थिति कांडक नष्ट नहीं होता, यह बतलाने के लिए अंतिम स्थिति कांडक भी नष्ट होना चाहिए, कम से कम परमाणु रहने चाहिए। अंतिम स्थिति कांडक संक्रमित होने के पश्चात अब उदयावली में जितने निषेक है, एक कम आवली प्रमाण निषेक है उसके, वो भी एक एक संक्रमित होकर सम्यक रूप से उदय में आएंगे सम्यक प्रकृति रूप से, और अंतिम निषेक रह जाएगा, तब कहेंगे उसके जघन्य द्रव्य। इसलिए यहाँ अंतिम स्थिति कांडक की बात उठाई। फिर शंका, उदयावली में जो द्रव्य गल रहा है उसे गलाकर ऐसा क्यों कहा? जब अंतिम स्थिति कांडक होता है, घात होता है, उसके बाद कितने निषेक बाकी? अभी उदयावली में एक समय कम इतने निषेक, उसकी स्थिति कितनी है? तो उदयावली प्रमाण स्थिति पड़ी है वहां पर। समाधान, उदयावली के अंदर प्रविष्ट हुए कर्म प्रदेशों को गलाने के लिए ऐसा कहा है। जो उदयावली में प्रवेश हो चुका है उनका कांडक घात वगैरह कुछ नहीं होता, ना ही उनका अपकर्षण होता है, ना ही उनका संक्रमण होता है, परंतु एक एक संक्रमित हो गए उदय रूप निषेक में। 130 पृष्ठ पर दूसरा समाधान पढ़ रहे अभी विशेषाक के ऊपर की लाइन, इस तरह जब एक निषेक की दो समय प्रमाण स्थिति शेष रहती है, कि एक निषेक की दो समय वाली स्थिति क्या होती है लक्ष्मी बहन? हाँ, सम्यक प्रकृति का उदय है और मिथ्यात्व का निषेक एक समय ऊपर पड़ा है, उसकी स्थिति कितनी पूछेंगे? तो दो समय वाली, परंतु उसका निषेक कितना है? एक ही है। अब वो निक समय में क्या होगा? सम्यक प्रकृति रूप से टर्न हो जाएगा, संक्रमित हो जाएगा, तो मिथ्यात्व रूप से नष्ट हो जाएगा। तो ये मिथ्यात्व का अंतिम निषेक है, तो उसकी स्थिति है दो समय और निषेक है एक, इसलिए उसको कहते हैं जब एक निषेक की दो समय प्रमाण स्थिति शेष रहती है तब मिथ्यात्व का जघन्य प्रदेश सत्कर्म होता है। अब विशेषार्थ, गुणित कर्मांश की विधि बतलाए है। पहले हमने देखा था ना, कर्म स्थिति में 2000 सागर कम है तब तक बादर पृथ्वी कायिक में, फिर वो त्रसों में आया वगैरह वगैरह। अब यहाँ कौन सी बात चली? क्षपित कर्मांश, मिनिमम पॉसिबल कर्म प्रदेश जिसके है, ऐसे जीवों में क्या क्या होता है। तो क्षपित कर्मांश की विधि उसके ठीक विपरीत है। वहां गुणित कर्मांश के लिए कर्म स्थिति प्रमाण काल तक बादर पृथ्वी कायिकों में उत्पन्न कराया था, यहाँ क्षपित कर्मांश के लिए कर्म स्थिति प्रमाण काल तक सूक्ष्म निगोदियों में उत्पन्न कराया है। क्योंकि अन्य जीवों के योग से इनका योग असंख्यात गुणाहीन होता है, इससे इनके अधिक कर्मों का संचय नहीं होता। योग हीन है तो कम कर्म प्रदेश का ग्रहण होता है। सूक्ष्म निगोदियों में उत्पन्न होता हुआ भी यह क्षपित कर्मांश वाला जीव अन्य गुणित कर्मांश वाले आदि जीवों की अपेक्षा अपर्याप्तकों में बहुत बार उत्पन्न होता है और पर्याप्तकों में कम बार उत्पन्न होता है। ये जो अपर्याप्तकों के अधिक भव और पर्याप्तकों के कम जो कह दिया है, वह गुणित कर्मांश की कंपैरिजन में कहा। इसके अपने अपर्याप्त भव ज्यादा होते हैं, पर्याप्त में कम काल घूमता, ऐसा नहीं है। सूक्ष्म क्या कहना चाहते हैं? फिर इसको पढ़ती हूँ मैं। सूक्ष्म निगोदियों में उत्पन्न होता हुआ भी यह क्षपित कर्मांश वाला जीव अन्य गुणित कर्मांश वाले आदि जीवों की अपेक्षा उनमें जितने अपर्याप्त के भव के लिए किए उसकी अपेक्षा ये क्षपित वाला अधिक भव करेगा, अपर्याप्त होंगे और पर्याप्तकों में कम बार उत्पन्न होता है। ये कम बार या अधिक बार एक दूसरे के कंपैरिजन में बताना है। यहाँ इस क्षपित कर्मांश वाले जीव को जो अन्य जीवों की अपेक्षा अपर्याप्तकों में बहुत बार उत्पन्न कराया गया है, सो अपने स्वयं के पर्याप्त भवों की अपेक्षा नहीं, क्योंकि स्वयं के पर्याप्त भवों की अपेक्षा अपर्याप्त भव थोड़े होते हैं।
क्या सूक्ष्म में अपर्याप्त भव कम होते हैं, खाली सूक्ष्म में
कहीं भी जाओ अपर्याप्त भव कम हो गए पर्याप्त भवों की अपेक्षा। अभी उसका खुलासा कर रहे हैं। खुलासा इस प्रकार है, दो इंद्रिय यदि अपर्याप्तकों में निरंतर उत्पन्न होता है तो अधिक से अधिक 80 बार उत्पन्न होता है। ये तो हमने पहले से जाना है ना, लगातार की बात चल रही है, निरंतर उत्पन्न होता है तो। तेइंद्रिय 60 बार, चौइंद्रिय 40 बार, पंचेंद्रिय 24 बार निरंतर अपर्याप्तकों में उत्पन्न होता है, ये तो हमने पहले देखा था। और एक इंद्रिय निरंतर कितनी बार उत्पन्न होता है?
36,000।
क्या क्या 33,000? पांच हजार 336 तो टोटल सबकी टोटल है,
उसमें से इतने कम करो।
हाँ, उसमें से इतने कम करो तो कितने रह गए? 66,132। हाँ निकालो ना, देखो इनके कितने हुए, देखो 80 और 60 कितने हुए, 140 और 40 180 और 24 204 हुए ना, और वह हमने 336 देखे थे, तो कितने रह गए, 132 रह गए टोटल जो हमने देखे थे केंद्रीय से पंचेंद्रीय तक के निरंतर अपर्याप्त भव, वो तो हमने अंतर्मूर्त में देखे थे। तो लगातार अगर रहते हैं तो कितने, 66,336, उसमें से द्विइंद्रिय तीनिंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय के भव घटा दो तो एक इंद्रियों के लगातार भव रहेंगे, वो 66,132 होते हैं। उसमें कितने प्रकार के एक इंद्रिय होते हैं? हाँ 11 प्रकार। हाँ कौन से 11? हाँ बोलो प्रतिभा। हाँ 4 ही सूक्ष्म लिए, वनस्पति कायिक में 2 सूक्ष्म और साधारण नहीं होते हैं। सूक्ष्म आप सूक्ष्म बता रहे हैं कि बादर बता रहे हैं, पहले ये देखो। सूक्ष्म सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, सूक्ष्म अग्नि कायिक, सूक्ष्म वायु कायिक, सूक्ष्म जल कायिक और 11 बताने। अरे सूक्ष्म कह रहे तो सूक्ष्म बादर क्यों ले रहे? पहले सूक्ष्म के जीव गिनाओ। और सूक्ष्म निगोद जिसको सूक्ष्म साधारण वाला जो सूक्ष्म है उसको कहेंगे। वनस्पति का एक सूक्ष्म में साधारण ही होते हैं, बात सही। अब बादर में देखना है, वो 4 तो है ही। अब वनस्पति कायिक में 2 भेद हो गए, कौन से? बादर में साधारण यानी निगोद और बादर में प्रत्येक। प्रत्येक के और 2 भेद करेंगे तो अलग, उसको अभी भेद नहीं करना, वो तो और ज्यादा भेद हो गए। तो इस तरह से ये 11 हो गए। अपर्याप्तों की बात चल रही है तो हर एक के खाते में 6,012 भव हो गए। 66,132 डिवाइडेड बाय 11 एक इंद्रियों के भव हो जाएगी। एक इंद्रिय
6,012 ना?
हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। यानी निरंतर उत्पन्न होने की संख्या बताई अपर्याप्तों में, किंतु दो इंद्रिय पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति 12 वर्ष। क्या कह दिया? दो इंद्रिय पर्याप्तों की उत्कृष्ट स्थिति 12 वर्ष, ते इंद्रिय पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति 49 दिन, चौइंद्रिय पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति 6 महीना और पंचेंद्रिय पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर बतलाए। अब यदि दो इंद्रिय पर्याप्तकों के निरंतर उत्पन्न होने के बार 80 लिए जाते हैं तो क्या कहना चाहते हैं? यदि जैसे अपर्याप्तों के निरंतर काल कितने भव हो सकते हैं, कितने बार उत्पन्न होता है, तो अभी हमने द्विंद्रिय के कितने देखे?
80 बार
लगातार निरंतर उसी भव में उत्पन्न होने के, यदि अपर्याप्तों के और पर्याप्तों के समान भी लेते हैं तो समान लेके देखेंगे ना क्या रिजल्ट आएगा। तो यदि पर्याप्तों के भी 80 लेते हैं तो कितने हो जाएंगे? 960 वर्ष हो जाएंगे। पर्याप्तों के निरंतर भव यदि 80 मानेंगे तो ये क्या कहना चाहते हैं? पर्याप्तों के भव ज्यादा क्यों है ये कारण बता रहे हैं। अपर्याप्तों के लगातार 80 होते हैं द्विंद्रिय में, पर्याप्तों के अगर 80 मान लिया जाए और वो भी उत्कृष्ट आयु के साथ जन्मा है 12 वर्ष वाला, तो कितने हो जाएंगे उससे? 960 वर्ष हो गए। इसी प्रकार तेइंद्रिय पर्याप्त के लगातार उत्पन्न होने के कुल भव 60 लिए जाते हैं तो ये होते ऐसा नहीं कह रहे। अपर्याप्तों के समान पर्याप्तों में भी अगर हम 60 मानेंगे तो कुल 8 वर्ष 2 माह प्राप्त होते हैं, क्योंकि 3 इंद्रियों की कितनी उत्कृष्ट आयु है? 49 दिन। 49 दिन है 49। वो 39 को 39 कहते हैं, 39, और 49 को 49, तो 8 वर्ष 2 माह होते हैं। और चौइंद्रिय पर्याप्त के लगातार उत्पन्न होने के कुल भव 40 लिए जाते हैं तो, यदि हम मानेंगे तो की बात है,
20 साल,
हाँ, तो 20 वर्ष प्राप्त होते हैं, क्योंकि चौइंद्रिय की 6 महीना है। परंतु कालानुयोग द्वार में एक युग की अपेक्षा इनकी उत्कृष्ट काय स्थिति संख्यात 1000 वर्ष कही है। किसकी? पर्याप्त, हाँ, पर्याप्त विकलेत्रीय की, सबकी सबकी, द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रियों के पर्याप्तों की काय स्थिति लगातार पर्याप्त 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 में जन्मने का काल कितना है? तो संख्यात 1000 वर्ष है। इसका अर्थ क्या होता है? अपर्याप्तों से पर्याप्त बहुत ज्यादा होते हैं, अपर्याप्तों के समान लेते हैं तो बहुत कम काल मिलता है। जैसे तीन्द्रियों में हमने कितने देखे? 8 वर्ष और कुछ, और कितने बताए लगातार रहने का काल? संख्यात 1000 वर्ष। इससे क्या सिद्ध होता है? अपने अपने पर्याप्त भो ज्यादा है, अपर्याप्त भो कम है, विकलेंद्रियों की बात चल रही नहीं यहाँ पर। इससे स्पष्ट है कि विकलत्रय के पर्याप्त भवों की अपेक्षा अपर्याप्त भव कम होते हैं, ये उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। इन्हें कम बार होंगे, पर्याप्तों के भव अधिक बार होंगे, अपर्याप्तों के भव कम बार होंगे। इस प्रकार जो बात विकलत्रय की कही है वही बात अन्य जीवों की भी जानना। संख्या की बात है वो, आप जो पूछ रहे हैं, हमने तो सूक्ष्म में पर्याप्त ज्यादा देखे, अपर्याप्त कम देखे, अब आदर में उल्टा क्रम देखा, तो वहां तो जीवों की संख्या देखी, और यहाँ एक ही जीव कितनी बार उत्पन्न होता है उसकी बात चल रही है।
नहीं, पर यहाँ पे प्रपोर्शन उल्टा नहीं हो सकता है, क्योंकि पर्याप्त सूक्ष्म में पर्याप्त ज्यादा है, अपर्याप्त कम है, और यहाँ पे अपर्याप्त ज्यादा है, पर्याप्त कम है बादर में।
हाँ, सूक्ष्म में क्या पर्याप्त ज्यादा है, फिर भी बादर और सूक्ष्म में कौन ज्यादा है?
सूक्ष्म।
और फिर इसलिए उसमें अपर्याप्त कम भी हो तो तो भी पर्याप्त ज्यादा ही होते हैं उसमें भी। इससे स्पष्ट है यहाँ क्षपित कर्मांश वाले निगोदिया जीव के अपने पर्याप्त भोग की अपेक्षा अपर्याप्त भोग अधिक नहीं लिए हैं, किंतु कहने का प्रयोजन क्या है, उसके सूक्ष्म निगोदिया के अपने पर्याप्त भोग कम है ऐसा नहीं लिया, परंतु गुणित कर्मांश वाले जीव की अपेक्षा उसने जितने पर्याप्त भोग किए हैं उसकी अपेक्षा इसके पर्याप्त भोग थोड़े हैं, उसने जितने अपर्याप्त भोग किए हैं उसकी अपेक्षा इसके अपर्याप्त भोग ज्यादा हुए, इतनी बात ले रही कहा ना कि गुणित कर्मांश वाले आदि जीवों के जितने अपर्याप्त भोग होते हैं उनकी अपेक्षा बात महत्व की है। यहाँ अपर्याप्त भोग अधिक लिए हैं तथा इस क्षपित कर्मांश वाले जीव के अपर्याप्त काल अधिक होता है और पर्याप्त काल थोड़ा।
यह पर्याप्त बहुत ज्यादा बताया पर अपर्याप्त काल ज्यादा बताया।
पर्याप्त काल थोड़ा,
अपर्याप्त
काल बड़ा बताया। अपर्याप्त काल बड़ा का अर्थ होता है जब पर्याप्ति पूर्ण करने का जो काल है। अपर्याप्त काल किसको कहेंगे, निवृत्ति अपर्याप्त को भी अपर्याप्त काल कहेंगे।
तो भी क्या है ये जो 49 दिन की जो स्थिति हम पकड़ते हैं 3 इंद्रिय में, तो उसकी अपेक्षा वो अंतर्भूत तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे ये ऐसे क्यों बताया, क्योंकि अपर्याप्त काल ज्यादा बताया और पर्याप्त काल कम बताया।
क्योंकि अपर्याप्त काल में जो योग है वो कम होता है।
नहीं वो तो ये तो काल की बात है ना, पर्याप्त काल थोड़ा बताया और अपर्याप्त काल ज्यादा बताया।
बराबर है,
पर अपर्याप्त में रहने का काल तो कम ही है और पर्याप्त में तो
वैसा नहीं लेना। अभी अपर्याप्त काल, अपर्याप्त में रहने का काल अलग है और अपर्याप्त का काल अलग बात है। अपर्याप्त जो अवस्था है, शरीर पर्याप्ति पूरी होने तक का जो काल है, किसी के जघन्य होगा किसी के मैक्सिमम होगा, उसमें लेना छोड़ा और बड़ा।
तो यहाँ पे ये पर्याप्त वाला कौन सा काल लिया,
पर्याप्त होने के बाद वाले ने पर्याप्त के भाव भले ज्यादा किए, बाद में उसके काल छोटा रहा, छोटी आयु वाले के होंगे,
अंतर्मूर्त वाला होगा,
अंतर्मूर्त वाले करेंगे, लंबी आयु वाले नहीं करेंगे। देखो इसका अपर्याप्त काल बड़ा बतलाने का कारण यह है, पर्याप्त काल के योग से अपर्याप्त काल का योग असंख्यात गुना हीन होता है और इससे अधिक कर्मों का संचय नहीं होता। ये तो क्लियर है ना, क्योंकि पहले देखो शरीर पर्याप्ति होने तक तो एकांत अनुवृद्धि योग होता है और बाद में परिणाम योग होता है। परिणाम योग में तो योग की वृद्धि बहुत हो सकती है, ज्यादा होती है, ज्यादा कम सब हो सकती है परंतु ज्यादा होती है, पर्याप्त है ना, तो वहाँ योग भी ज्यादा होगा। इसलिए पर्याप्त का काल छोटा लिया, अपर्याप्त का काल बड़ा लिया। सूक्ष्म निगोदिया जीव के जघन्य योग स्थान भी होता है और उत्कृष्ट योग स्थान भी होता है, उसकी जो अपनी अपनी जो रेंज है जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक योग स्थान अलग अलग होते हैं सूक्ष्म जीवों के भी। यतः यह क्षपित कर्मांश वाला जीव है अतः इसे निरंतर यथासंभव जघन्य स्थान प्राप्त कराया है, जब जब पॉसिबल है यथासंभव है, लगातार इतने लंबे काल तक तो एक ही योग में कोई जीव नहीं रहता है, परंतु यथासंभव जघन्य योग में अधिक काल रहा, यानी अन्य योग होते हैं फिर भी दोबारा लौटकर जघन्य में अधिक बार आएगा। इसका तात्पर्य है जब जघन्य योग स्थानों को प्राप्त करने के बार पूरे हो जाते हैं, यानी कितनी बार होता है उसके भी लिमिट है, तब यथासंभव उत्कृष्ट योग स्थान को भी प्राप्त होता है। बीच बीच में नहीं होगा वो बात नहीं है, परंतु लौटकर जघन्य स्थानों में बार बार आएगा। इसका भी फल कर्मों का कम संचय कराना है। इसके योग स्थानों की जघन्य और उत्कृष्ट दोनों वृद्धियां संभव हैं। योग स्थानों की वृद्धि यानी बढ़ना, जो योग है उससे अधिक योग हो जाना, वृद्धि भी होगी हानि भी होगी। तो कहते जो वृद्धि होती है वो जघन्य भी वृद्धि होगी और उत्कृष्ट भी होगी। वृद्धि में जो डिफरेंस पड़ जाता है ना, पहले जघन्य था और अभी थोड़ा बढ़ गया और थोड़ा बढ़ गया, मैक्सिमम बढ़ गया, तो मैक्सिमम बढ़ा तो वृद्धि ज्यादा,
तो संचय भी ज्यादा।
हाँ, तो संचय ज्यादा, कम वृद्धि हुई, वृद्धि तो हो गई
पर थोड़ी कम,
परंतु इतना नहीं डिफरेंस पड़ा,
तो संचय कम।
हाँ, तो संचय कम। तो कहते हैं अतः उत्कृष्ट वृद्धि का निषेध करने के लिए जघन्य वृद्धि का विधान किया है। यहां तक बात ख्याल में आई? इस क्षपित कर्मांश वाले जीव के मोहनीय को कम पर कर्म परमाणु प्राप्त हो, इसलिए इसके सदा आयुबंध उत्कृष्ट योग से कराया, क्योंकि जघन्य योग से होता है तो कम परमाणु लेते हैं और उसमें फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आयुबंध के काल में मोहनीय के लिए कम परमाणु आते हैं, इसलिए आयुबंध का काल भी बढ़ाओ और वहाँ जघन्य योग से कराओ, नहीं उत्कृष्ट योग से कराओ, उल्टा लेना है, हमेशा उल्टा लेना है, क्योंकि गुणित कर्मांशिक में हम जघन्य योग से कराते थे। क्षपित कर्मांश वाला जीव गुणित कर्मांश वाले जीव की अपेक्षा अपकर्षण अधिक कर्मों का करता है, यानी उसके विशुद्ध परिणाम ज्यादा रहते तो अपकर्षण होता रहता है अधिक, जिससे निरंतर अधिक कर्मों की निर्जरा होती रहती है। यह बतलाने के लिए नीचे की स्थितियों को अधिक प्रदेश वाला कराया है। ये उत्कर्षण अपकर्षण आवास जो है उसमें ये बताते हैं, नीचे के निषेकों में द्रव्य ज्यादा दिया जाता है और वो निर्जरा होकर अधस्थिति गलना के द्वारा गल जाता है। अधिकतर बहुत से कर्म संक्लेश की अधिकता से उपशम निधत्य और निकाचनारूप रहे आते हैं। क्या कहा? ये जो पूछा जाता है ना, वहां तो इतनी स्थिति कम होती है, फिर भी निगोद में ऐसा क्यों कहा, भाव कलंक सुपौरा, भाव कलंक की प्रचुरता से, यानी आगे क्या लिखा है, निगोद वासम न मुंचंती, निगोद का वास क्यों नहीं छोड़ते, निगोद में रहने का क्यों नहीं छोड़ते, तो संकलेश परिणामों के कारण बारंबार, तो ये जो सारे निदति निकाचक निरूप रह जाते हैं। यतः यह क्षपित कर्मांश जीव है, अतः इसके इन भावों का निषेध करने के लिए सदा विशुद्ध परिणामों की बहुलता बतलाई है।
इतने विशुद्ध परिणाम के बावजूद भी वो इतने कर्म स्थिति काल तक निगोद में रहा।
इतने परिणामों के बावजूद, क्योंकि आयु का बंध कैसे करता है क्या है, उस पर निर्भर है, उस समय कौन से आयु का बंध कर रहा है, तभी तो बाहर निकलेगा वो। तो अन्यत्र विशुद्ध, देखो आयु बंध के विशुद्ध परिणाम अलग बात है, उनके परिणाम ही अलग प्रकार के होते हैं, और ये सामान्य से पूरे लाइफ टाइम के परिणाम की बात चल रही है। तो यहाँ कहते हैं विशुद्ध परिणामों की बहुलता बतलाई, अन्य परिणाम न होगे वो बात नहीं है, होंगे बीच बीच में, लगातार किसी एक परिणाम में रहेगा नहीं जीव। इस प्रकार पूर्वोक्त छह आवश्यकों के द्वारा सूक्ष्म निगोदियों में कर्म स्थिति काल तक परिभ्रमण कराने पर जब इसका अभवयों के योग्य जघन्य प्रदेश सत्कर्म हो जाता है, तब अभवयों के योग्य जघन्य प्रदेश सत्कर्म ने अभी कहाँ होता है, तो सूक्ष्म निगोदिया में होता है, बाकी भव्यों के कहाँ होगा, तो क्षपणा में होगा। तो अभवयों के योग्य जघन्य में जघन्य प्रदेश सत्कर्म हुआ, तब सम्यक्त्वादी गुणों के द्वारा कर्मों की और निर्जरा कराने के लिए इसे त्रसों में उत्पन्न कराना चाहिए। वेदना खंड में इसे पहले बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त को में उत्पन्न कराया है, यानी सूक्ष्म निगोद में से लेकर कर्म स्थिति के बाद त्रसों में भेजने के पहले बादर पृथ्वी का एक में पर्याप्त में। वहां यह प्रश्न किया गया है कि सूक्ष्म निगोद से निकालकर इसे सीधा मनुष्यों में क्यों नहीं उत्पन्न कराया है, ये वही प्रश्न पूछा था। तो वीरसेन स्वामी ने वहाँ इस प्रश्न का यह समाधान किया है कि वहाँ इन्हें कहा धवला में वेदना खंड में, क्योंकि यहाँ भी वीरसेन स्वामी की बात चल रही है, तो वहाँ इस प्रश्न का वहाँ इन्हें वेदना खंड में धवला में। यह समाधान किया है यदि सूक्ष्म निगोद से निकालकर सीधा मनुष्यों में उत्पन्न कराया जाता है तो यानी मनुष्यों में उत्पन्न नहीं होता, ये बात नहीं है, मनुष्यों में उत्पन्न हो सकता है, यदि हो तो वह केवल सम्यक और संयमासंयम को ही ग्रहण करता है, मुनिपन नहीं किया, तब भी इनको अतिशीघ्र ग्रहण न करके ऐसे जीव को इनके ग्रहण करने में अधिक काल लगता है। हाँ, वो अर्लीस्ट नहीं होगा, इसलिए इसे पहले बादर पृथ्वी का एक पर्याप्तकों में उत्पन्न कराया है। इस पर पुनः प्रश्न उठा कि तो केवल बादर पृथ्वी का एकों में ही क्यों उत्पन्न कराया गया है, अन्यत्र क्यों नहीं है? तो इसका वीरसेन स्वामी ने यह समाधान किया है, जल का एक आदि से जो मनुष्यों में उत्पन्न होता है वह अतिशीघ्र संयम आदि को नहीं ग्रहण कर सकता। जलकायिक अग्निकायिक वगैरह में से वो उत्पन्न होता है तो अतिशीघ्र संयम को ग्रहण नहीं कर सकता। एक कैसे कैसे रूल्स है ना। हाँ, अतः सर्वप्रथम बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त को में ही उत्पन्न कराया है।
अग्नि का एक और वायु का एक तो मनुष्य में आते हैं, पर वो संयम पारे सम्यक तो प्राप्त करते
हैं। अभी लिखा ना, बहुत देरी, अतिशीघ्र नहीं कर सकते। मनुष्य में नहीं आते ना, वो मनुष्य गति की तो उद्वेल ना करने वाले जीव है। हाँ।
तो आएगा ही नहीं मनुष्य में,
वो बीच में एक
यहाँ पे जल का एक दिखाई,
जल का एक तो आ सकता है, अग्नि का एक वायु का एक की बात आपको याद है।
हाँ,
इस प्रकार जब यह जीव त्रसों में उत्पन्न हो जाए, पहले सूक्ष्म निगोदिया में उत्पन्न कराया, कोई कहते डायरेक्ट आता है, कोई कहेंगे बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त का एक भव करके आएंगे, तो जब त्रसों में उत्पन्न हो जाए तो वहाँ इन्हें त्रसों में संयमासंयम, त्रसों में यानी अभी संगी पंचनी होना आवश्यक है ना, संयमासंयम संयम और सम्यक्त को अनेक बार प्राप्त करावे और बार बार कषाय का उपशम करावे। बार बार यानी चार बार ही हो सकता है, अधिक बार तो नहीं है।
तो ये मनुष्य और तिरियन पे ही घूमेगा,
मनुष्य तिरियन जो उनकी बात अधिक है, और मिथ्यात्व में जाए तो देव में भी समय तो प्राप्त कर सकता है, अनंत अनुबंधी की विषय योजना करता है।
पर देव में पीछे भव बहुत लंबा हो जाएगा।
हाँ, तो छोटे छोटे भव देवों में भेजना ना, 10,000 वर्ष वालों में। देखो क्या कहते हैं, यह नियम है कि एक जीव पल्ले के असंख्यात भाग बार संयमासंयम और सम्यक् को प्राप्त हो सकता है, अलग अलग हो, और 32 बार संयम को प्राप्त हो सकता है।
तो सब्जेक्ट को प्राप्त करेगा, वही संयम से इनको प्राप्त करेगा ना।
हाँ, पर डायरेक्ट भी हो सकता है ना। अच्छा, सम्यक को प्राप्त करता है तो चौथा गुण स्थान भी लेना उसमें।
अच्छा, तो ये अलग अलग पल्ले के असंख्यात बार।
हाँ, संयमासंयम कितने बार, पल्ले के असंख्यात बार, सम्यक तो कितने बार। जब हम सम्यक तो कहते तो गुणस्थान की चर्चा नहीं करते, जब संयमासंयम कहेंगे तो अकेले पांचवे गुणस्थान की बात है, क्योंकि सम्यक के साथ वो चौथे में जावे, पांचवे में जाए, सातवें में भी जाए। तो यहाँ सम्यक की बात है ना, सम्यक को कितनी बार, पल्ले के असंख्यात बार। हमने तो औपशमिक सम्यक, प्रथम औपशम सम्यक को भी इतनी बार देखा है। पर यहाँ इस प्रकार की संख्या का निर्देश नहीं किया, यहाँ ऐसा नहीं कहा कि पल्ले के असंख्यात में बार करता है, यहाँ तो केवल अनेक बार करता है इतना ही लिख दिया। जबकि वेदना खंड में इसी प्रकरण में इस प्रकार की संख्या का स्पष्ट निर्देश किया है? ये प्रश्न है, प्रश्न ख्याल में है। वेदना खंड में भी क्षपित कर्मांशिक की बात आई है, वहां तो लिख दिया कि इतने बार होता है। यहां संख्या का निर्देश न करने का कारण यह है कि आगे चलकर इस जीव को सम्यक्त्व के साथ 132 सागर काल तक परिभ्रमण और कराया है। अब यदि यह जीव सम्यक्त्व आदि को अधिक से अधिक जितनी बार प्राप्त करना चाहिए उतनी बार प्राप्त कर ले, तो फिर इसका 132 सागर काल तक सम्यक्त्व के साथ और परिभ्रमण करना संभव नहीं हो सकता। उसका अगर कोटा पूरा हो तो अभी इतने लंबे काल तक वो नहीं सम्यक्त्व में रह सकता, वो तो जल्दी मोक्ष चला जाएगा। यही कारण है यहाँ स्पष्टतः संख्या का निर्देश नहीं किया है, किंतु वेदना खंड में ऐसे जीव को अलग से सम्यक्त्व के साथ 132 सागर काल तक परिभ्रमण नहीं कराया है। वहाँ तो उसने इतने बार सम्यक्त्व ग्रहण किया इतना ही बताया, वहाँ 132 सागर की बात नहीं उठाई है।
तो क्या जो जीव ने पल्लव के असंख्यात बार सम्यक्त्व प्राप्त किया है वो 132 सागर तक नहीं घूमेगा और जल्दी मोक्ष चला जाएगा?
क्योंकि उसके पल्ले के असंख्यात भाग बार पूरे हो गए ना, अभी ऑलरेडी जिसने पूर्ण किए हैं।
पर यहाँ तो 132 सागर तक तो उसको सम्यक्त्व के साथ ही रखा है, तो वहाँ पे तो कोई प्राप्ति का सवाल ही नहीं है।
हाँ, प्राप्ति का सवाल नहीं, परंतु उसका अगर हम पल्ले के असंख्यात भाग पहले ही वो पूरा कर चुका है तो नहीं ले सकते ना उसको। जितनी बार प्राप्त कराना है वो अगर पहले से ही हो जाता है तो अभी उसका लंबे काल तक इतना लंबा काल नहीं घूमेगा, वो
कम काल में सपड़ा कर।
हाँ। तो वेदना खंड में अलग से 132 सागर की बात नहीं लिखी है, इसलिए वहां संख्या का निर्देश स्पष्टतः कर दिया है, यानी उसी में वो 132 है तो वो तो गर्वित हो गया। इस प्रकार उक्त क्रिया कर लेने के बाद, उक्त क्रिया कर लेने के बाद यानी अनेक बार संयमासंयम सम्यक और संयम को धारण करने के बाद 132 सागर काल तक सम्यक के साथ परिभ्रमण करावे, यह चूर्णी सूत्र में बतलाया है। पर वीरसेन स्वामी इसकी टीका करते हुए लिखते हैं, इन दोनों के बीच में यानी वो 132 सागर घूमने के पहले, इन दोनों के बीच में पहले इसे 10,000 वर्ष की आयु वाले देवों में उत्पन्न करावे।
तो मिथ्यात्व में जाएगा 10,000 वर्ष,
मिथ्यात्व में से जाके यानी इतनी बार अनेक बार सम्यक तो संयमा संयम संयम पाला, अब बीच में वो मिथ्यात्व में जाएगा 10,000 वर्ष की आयु वाले देवों में उत्पन्न होगा। अनंतर यथाविधि सूक्ष्म एकेंद्रियों में उत्पन्न करावे, देवों में जाएगा और फिर बीच में कोई भव करके फिर एकेंद्रियों में चला जाएगा। यहाँ यथाविधि या समयाविरोध से, ये समयाविरोध क्या होता है मालूम नहीं?
तुरंत वॉइस,
हाँ,
पश्चात वाला समय में वो सूक्ष्म में नहीं जाएगा,
क्या कहते? हाँ, आपने बराबर बोला है। समय ने आगम, समय अविरोध, समया विरोध यानी आगमन आगमनकुल, समय अविरोध है ना, समय ने आगम, आगम से अविरोध। उसका अर्थ क्या है? क्योंकि सूक्ष्म निगोद में भेजना है तो देव तो डायरेक्ट नहीं जाएगा, तो आगम में जैसा आता है यानी कि देव तो नहीं जाता है, तो देव में से आएगा मनुष्य तिर्यंचों में और वहां से चला जाएगा, इसको कहेंगे समयाविरोध। यहाँ यथाविधि या समयाविरोध से लिखने का कारण यह है, देव मरकर सीधा सूक्ष्म एकेंद्रियों में उत्पन्न नहीं होता, अतः पहले उसे अन्यत्र उत्पन्न कराना चाहिए। अन्यत्र ने कहा मनुष्य तिर्यंचों में ही करेंगे, और बाद में सूक्ष्म इकेंद्रियों में उत्पन्न करावे। या अगर ये हम भवनत्रिक वाला लिया है तो अन्यत्र में हम तिर्यंश में ये बादर पृथ्वी का एक भी ले सकते हुए हैं, क्योंकि भवनत्रिक के देव बादर पर्याप्त जीवों में उत्पन्न हो सकते। कौन से? पृथ्वी का एक, जल का एक और वनस्पति का एक, प्रत्येक वनस्पति का एक में भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो वहाँ उसके पश्चात सूक्ष्म निगोद में जाएंगे। इसका अर्थ होता है अन्यत्र, यहाँ रहकर, यहाँ रहकर यानी सूक्ष्म निगोद में रहकर, यह पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण काल के द्वारा, पल्य के असंख्यात वे भाग प्रमाण स्थिति कांडकों का घात करता है। क्या कहते हैं? पल्य के असंख्यात वे भाग काल में कितने बार स्थिति कांडक करता है? पल्य के असंख्यात वे भाग बार स्थिति कांडक करता है, क्योंकि एक स्थिति कांडक होने में अंतर्मूर्त लगता है। एक स्थिति कांडक घात के लिए अंतर्मूर्त काल लगता है। देखो लिखा है यहाँ पर, इसलिए पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण स्थिति कांडकों का घात करने के लिए भी पल्ले का असंख्यात वा भाग प्रमाण काल लगेगा, क्योंकि पल्ले के असंख्यात वे भाग को एक अंतर्मूर्त से गुणित करने पर भी पल्ले का असंख्यात वा भाग ही प्राप्त होता है। एक कांडक के लिए अंतर्मूर्त पल्ले के असंख्यात वे भाग बार हुआ तो इंटू मल्टीप्लाइड बाय अंतर्मूर्त, वो भी पल्ले का असंख्यात भाग ही रहेगा। इसके बाद इस सूक्ष्म एकेंद्रिय को यथाविधि मनुष्यों में उत्पन्न करावे। यथाविधि फिर बताया, क्योंकि वो संयम अगर धारण नहीं करता आदि आदि बातें, तो यथाविधि उत्पन्न करावे। और पश्चात 132 सागर काल तक समित्व के साथ परिभ्रमण करावे। यानी डायरेक्ट उसको नहीं भेजा, बीच में एक देव का भव किया, फिर सूक्ष्म निगोद में ले गए, फिर पल्ले का असंख्यात काल बिताया, और फिर जाके यथाविधि मनुष्यों में उत्पन्न करा के फिर 132 सागर काल तक घुमाया। तदनंतर मुनि का दर्शन, मुनि का क्षय कराते हुए मिथ्यात्व का जघन्य प्रदेश सत्कर्म प्राप्त करे। प्राप्त करे ने वो अंतिम उसका निषेक रहे। तब वेदना खंड में पल्य के असंख्यात वे भाग कम कर्म स्थिति प्रमाण काल तक सूक्ष्म एकेंद्रियों में उत्पन्न कराने के बाद क्रमशः बादर पृथ्वी कायिकों में, मनुष्यों में, 10,000 वर्ष की आयु वाले देवों में, वहां से बादर पृथ्वी कायिकों में उत्पन्न कराया है। यहां मनुष्य और देवों में क्रम से संयम और सम्यक्त को भी प्राप्त कराया है। अनंतर सूक्ष्म करना, सूक्ष्म पर्याप्त निगोदियों में उत्पन्न कराकर पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण स्थिति कांडकों का घात करने के लिए पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण काल तक वही रहने दिया है। पर्याप्त निगोदों में बताया, वहां तो कांडक ज्यादा हो गए। अनंतर बादर पृथ्वी कायिकों में उत्पन्न कराकर फिर त्रसों में उत्पन्न कराया है। देखो लगातार तो सूक्ष्म पर्याप्त में तो रहेगा नहीं, निगोद में भी पर्याप्त पर्याप्त। देखो सूक्ष्म में पर्याप्त रहने का भी उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, और अपर्याप्त में भी अंतर्मूर्त है, परंतु दोनों में मिलकर रहने का काल असंख्यात लोक प्रमाण। यहाँ तो बहुत कम काल लिया है। देखो अनंतर बादर पृथ्वी कायिकों में उत्पन्न कराकर फिर त्रसों में उत्पन्न कराया है, और यहाँ पल्ले के असंख्यात वे भाग बार संयमा संयम को, इतने ही बार सम्यक्त्व को, अलग अलग लिया ना, पल्ले के असंख्यात वे भाग बार संयमा संयम को, उतने ही बार ने पल्ले के असंख्यात वे भाग बार संयम सम्यक्त्व को, 32 बार संयम को और 4 बार उपशम श्रेणी को प्राप्त कराया है। फिर अंत में एक पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न कराकर और अतिशीघ्र संयम को प्राप्त कराकर। क्यों? लंबे काल तक गुण श्रेणी करानी है ना उनकी, जीवन भर संयम के साथ रखा है, और जब अंतर्मूर्त काल शेष रहा तब दर्शन मुनि का क्षय कराते हुए मिथ्यात्व का जघन्य प्रदेश सत्कर्म प्राप्त किया है। ये वेदना खंड में पूरी विधि ऐसी बताई। इस प्रकार वेदना खंड के कथन को और चूर्णी सूत्र के कथन को मिलाकर पढ़ने पर जो विशेषता ज्ञात होती है, यानी जो डिफरेंस उसमें ज्ञात होता है।
132 सागर तक उसको समेप्तों के साथ घुमाया और वापस मिथ्यात्व मिलाया, पीछे इधर ये इतने भ्रमण कराया।
हाँ, ये जो 132 सागर काल तक घुमाया, वही वो सम्यक्त्व के साथ। तो एक बार वो 132 सागर तक रहा तो उसके सम्यक्त्व तो उसने दो बार ग्रहण किया उसमें। क्यों दो बार? क्यों बीच में सम्यक मिथ्यात्व में आया है ना, तो पल्ले के असंख्यात में भाग बार में उस दो बार को गिन लिया उन्होंने।
और उसके पश्चात ये सब कार्य कर रहा है पल्ले के असंख्यात भाग बार संयम। अरे
वो बीच में इसमें 132 अलग से नहीं लिया है,
पहले सूक्ष्म में कर्म स्थिति काल प्रमाण रहा,
फिर त्रस में आया,
पीछे देवों में उत्पन्न कराया। पीछे देवों में से उसको सूक्ष्म में भेजा।
अब यहाँ वेदना खंड के अकॉर्डिंगली क्या कहते हैं, वेदना खंड में क्या क्या बताए वो डिफरेंस यहाँ बता रहे हैं। पहले जो हमने देखा था वो यहाँ वीरसेन स्वामी ने चूर्णी सूत्र के अकॉर्डिंगली बताया था, अब वेदना खंड में क्या बताए वो यहाँ बता रहे हैं। तो वहाँ जितने पॉसिबल है, पल्ले के असंख्यात विभाग बार सहिमा संयम, पल्ले के असंख्यात विभाग बार सम्यक्त्व, 32 बार संयम। अब 32 यानी वो लास्ट में धारण करेगा, वो 32वां समझना।
तो वेदना खंड में ये 132 सागर का काल बताया,
वही तो बता रहे हैं, वो अलग से नहीं बताया। इसी में जो होगा वहाँ गर्भित है, यथा योग्य उसी में गर्भित है। तो इन दोनों में जो विशेषता ज्ञात होती है उसका कोष्टक इस प्रकार है। ये दोनों में क्या डिफरेंस है चूर्णी सूत्र में और वेदना खंड में, उसको यहाँ ये सूत्र में टेबल में बताया। देखो सेंटर वाली जो लाइन है वो डिवाइड करती है, एक बाजू चूर्णी सूत्र का कथन है, एक बाजू वेदना खंड का है। दोनों में अपने अपने में स्वामी और काल बताया है। अब चूर्णी सूत्र में स्वामी और काल, तो जो यानी कौन से जीव की कहाँ क्या बात है, ये सूक्ष्म करना, सूक्ष्म हुआ है सूक्ष्म। चूर्णी सूत्र में क्या बताया था, सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव कितने काल तक रहा, कर्म स्थिति काल प्रमाण। अब यहाँ वेदना खंड में क्या लिखते हैं, सूक्ष्म एकेंद्रीय में कितने काल तक रहा, पल्ले के असंख्यात भाग कम कर्म स्थिति प्रमाण काल तक। यानी एक पल्ले के असंख्यात भाग पहले वो त्रसो में आ गया। त्रसो में की बात यहाँ तो डायरेक्ट त्रस में लाया था, चूर्णी सूत्र में डायरेक्ट त्रस में लाया था कर्म स्थिति के बाद। वेदना खंड में बीच में बादर पृथ्वी पर्याप्त बनाया और फिर मनुष्यों में लाया। त्रस में संयमासंयम, संयम और सम्यक्त्व को अनेक बार प्राप्त किया, चार बार कषाय का उपशम किया और फिर देव को 10,000 वर्ष की आयु वाले देव में उत्पन्न किया। अब यहाँ क्या लिया है, मनुष्य पूर्व कोटि वाला हुआ, फिर उसके बाद देव 10,000 वर्ष का हुआ और बाद में मादर पृथ्वी का एक में चला गया और उसके बाद सूक्ष्म केंद्र में चला गया, वहाँ पल्ले के असंख्यात विभाग काल रहा। और यहाँ भी देव के बाद मादर पृथ्वी का एक पर्याप्त लिया, उसके बाद सूक्ष्म केंद्रियों में उत्पन्न हुआ, यह भी पल्ले के असंख्यात विभाग काल तक रहा। ये तो दोनों में समान है, देव और ये बीच की स्टेज। सूक्ष्म केंद्रियों में से बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त हुआ और उसके बाद मनुष्य होकर 8 वर्ष और अंतर्मूर्त में उसने क्षपणा की। अब ये भी सूक्ष्म केंद्रियों में से बादर पृथ्वी का एक के बाद त्रस में आया और यहाँ पर उसने पल्ले के असंख्यात भाग बार संयमा संयम और सम्यक तो 32 बार संयम, 4 बार कषाय को उपशम और मनुष्य हुआ एक पूर्व कोटि वाला,
और अंत में जाके
यहाँ फिर जाके उसने अर्लीएस्ट संयम धारण किया और अंत में जाकर क्षपणा की। अब यह मनुष्य 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त लिया है, उसके बाद सम्यक्त्व के साथ 132 सागर रहा। 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में सम्यक्त्व प्राप्त किया, फिर 132 सागर तक सम्यक्त्व के साथ रहा, ऐसा जीव। ये दोनों में डिफरेंस है। और बाद में वो क्षपणा करेगा और ये पूर्व कोटि में भी अंत के अंतर्मुहूर्त जा रहेगा तभी क्षपणा करेगा। ये दोनों के कथन में थोड़ा डिफरेंस है। स्वामित्व विषयक इस निषेक में कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर पल्ले के असंख्यात वे भाग अधिक 266 सागर में बांधे गए द्रव्य का एक भी परमाणु नहीं है, क्योंकि वह जीव कर्म स्थिति काल से बाहर अर्थात उससे अतिरिक्त पल्ले के असंख्यात वे भाग अधिक 266 काल तक घुमा है। कर्म स्थिति प्रमाण काल तक तो पहले समय में बंधे हुए समय प्रबद्ध तो रहेगा, अभी उसके आगे कितना घुमा वो पल्ले का असंख्यात भाग अधिक 266 सागर। देखो पल्ले का असंख्यात भाग बड़ा है कि सागर बड़ा है?
सागर बड़ा है।
हाँ, क्योंकि 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का एक सागर होता है और यह पल्ले के असंख्यात भाग की बात है। शंका, वह जीव कर्म स्थिति काल से बाहर भी घुमा है, यह कैसे जाना?
यहाँ पे ये कैसे बताया कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर पल्ले के असंख्यात भाग अधिक 266 सागर में बांधे गए द्रव्य का एक भी परमाणु नहीं है, क्या ये अंत कोड़ा कोड़ी में सब निकल गया ऐसे बता रहे? नहीं,
स्वामित्व विषय की इस निषेक में अभी उसने
अंत वाला निषेक में जब हाँ। ये जो पल्ले का संख्या का भाग अधिक 266 सागर उसके अंत में वो पहले समय में बांधा गया एक भी परमाणु वहाँ पे नहीं है, यही कहना चाहते हैं ना, क्योंकि मैक्सिमम स्थिति तो 70 कोड़ा कोड़ी की हो सकती है, तो यहाँ पे इतने काल में उसने सब
अभी मिथ्या तो की बात चल रही है।
हाँ।
266 सागर तक कितने बांधे उसने
अंत कोड़ा कोड़ी
मिथ्या तो
अरे बांधा ही नहीं सॉरी
वही तो बता रहे
अच्छा बांधे गए द्रव्य का एक भी परमाणु
बांधे गए द्रव्य का एक भी परमाणु नहीं है, क्योंकि वह जीव कर्म स्थिति काल से बाहर अर्थात उससे अतिरिक्त पल्ले के असंख्यात भाग अधिक 266 सागर काल तक घुमा है। शंका, वह जीव कर्म स्थिति काल से बाहर भी घुमा है यह कैसे जाना? अभव्य के योग्य जघन्य प्रदेश सत्कर्म करके फिर त्रसों में आ गया, इस सूत्र से जाना। तथा जो भव्य जीव सूक्ष्म एकेंद्रियों में क्षपित कर्मांश की विधि के साथ कर्म स्थिति काल तक नहीं रहा, उसका सत्कर्म अभव्य जीव के जघन्य सत्कर्म के समान नहीं होता। कर्म स्थिति प्रमाण रहेगा तो ही उसका अभव्य के समान जघन्य सत्कर्म होगा, क्योंकि उसके कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर बल्लोपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण समय प्रबद्धों के कर्म स्कंद अधिक होते हैं। अतः उन्हें अभव्यों के समान मानने में विरोध आता है।
कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण समय प्रबद्धों के कर्म स्कंद अधिक होते, तो वहाँ पे तो कर्म स्थिति में तो सब निकल ही जाएंगे।
हाँ, कर्म स्थिति में तो उसके वो निकल जाएंगे जो पहले समय में बांधा है वो निकलेगा।
अच्छा,
वो पहले समय में बंधा हुआ निकलेगा, उसके बाद बंधे हुए
तो बाकी रह गए
उनमें कुछ ना कुछ रहेगा। हाँ, वही बात बताना। और कर्म स्थिति काल के बाहर भी घुमा है तो कर्म स्थिति में पहले जो बंधे थे वो तो नहीं रहे, तो बाहर जितना घुमा है उतने काल तक बांधे हुए वो भी नहीं रहेंगे। नहीं समझे, कर्म स्थिति काल तक वो घुमा एक केंद्र में, उसके बाहर भी वो इतने काल तक घुमा ये जो कह दिया है, तो वो पहले समय प्रबंध में से अभी कुछ नहीं द्रव्य रहा, बाद में तो सूक्ष्म निगोद में ही रहा वो इतने काल तक।
तो पल्ले का असंख्यात भाग,
तो जो उसने पहले बांधे हुए थे उसके पल्ले के असंख्यात भाग काल में उसने एक इंद्रिय के योग्य कर दिया, और अभी जो बांधेगा वो तो कम स्थिति वाला बांधेगा। पहले जो पहले बांध कर आया था उसकी बात थी,
ये जो पल्ले के असंख्यात भाग प्रवण बताया वो वहाँ भी उत्कृष्ट से जगनीय स्थिति की अपेक्षा बताया,
ये वहाँ उसके
क्योंकि शक्ति रूप से जो बताया है वो पल्ले के असंख्यात भाग, एक सागर में पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण जो डिफरेंस
हाँ, कम है, होता है हाँ।
वो इतना प्रमाण जो शक्ति रूप थे वो ही रह जाएगा, इसे बता रहे हैं
वो नहीं बताना है यहाँ पर, उसकी स्थिति नहीं बतानी है। देखो इसको फिर पढ़ेंगे, पहले में पहले क्या किया उसने, अभव्य के योग्य जघन्य प्रदेश सत्कर्म करके नीचे से चौथी लाइन, फिर त्रसों में आया गया। इस सूत्र से क्या जानता है कि कर्म स्थिति काल से बाहर भी घूमा, कर्म स्थिति बिताकर अभव्यों के योग्य करके फिर त्रसों में आया है। इसके क्या प्रूव हो गई, कर्म स्थिति के बाहर भी घूम रहा है। यहाँ भी ऊपर ऐसा ही लिखा था, वहां तो उन्होंने अस्पल्य का असंख्यात भाग कम था तभी बाहर आया इसी बात हाँ। बताई थी, वो बात यहाँ नहीं बताई। अब ये नीचे से दूसरी लाइन पढ़ेंगे, जो भव्य जीव सूक्ष्म एकेंद्रियों में क्षपित कर्मांश की विधि के साथ, कौन सी विधि हुई, जो छह आवास देखे थे उस विधि के साथ कर्म स्थिति काल तक नहीं रहा, उसका सत्कर्म अभव्य जीव के जघन्य सत्कर्म के समान नहीं होता, अधिक होगा क्योंकि वो कम काल तक वहां रहे हैं, क्योंकि उसके कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर कम काल तक रहा ना, उसके कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर पल्लोपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण समय प्रबद्धों के कर्म स्कंद अधिक होते हैं। क्योंकि वो कम काल तक वहां रहा है,
ये पल्ले का असंख्यात भाग जो है
इतना कम काल तक रहा तो उसने निश्चय उतने रहेंगे ज्यादा रहेंगे, अतः उन्हें अभव्यों के समान मानने में विरोध आता है, तथा उसके निर्लेपन स्थान प्रमाण समय प्रबद्ध भी नियम से है। ये पहले निर्लेपन स्थान शब्द आया था, अभी अभी लाया है, वो बहुत पहले दिए थे अपने हाँ। निर्लेपन स्थान यानी जहाँ बंद नहीं होता, ऐसे कुछ स्थान है, बहुत पहले दी थी बात, ये पहले शब्द आया था, क्या कहते हैं, तथा उसके निर्लेपन स्थान प्रमाण समय प्रबद्ध भी नियम से है, क्योंकि उसके असंभव रूप पक्ष को ग्रहण किए बिना जघन्य द्रव्यपना नहीं बन सकता, अतः बाकी बची कर्म स्थिति में बांधे गए सब समय प्रबद्धों के परमाणु जघन्य द्रव्य में है यह सिद्ध हुआ। ये कुछ ख्याल में नहीं आया, निर्लेपन स्थान देखना है अभी जैन सिद्धांत में, पहले हमको ये शब्द आया था निर्लेपन स्थान, और उसके बारे में लिखकर भी लाया था अरिंदा ने, जरा निकालेंगे वहां जैन सिद्धांत कोश, मिला निर्लेपन स्थान उसमें न निकाला, न वाला निकाला, इंडेक्स में मिलेगा, इंडेक्स का है ना, उसमें पांचवा भाग है ना मेरे पास, ये छोटा वाला है उसमें, वो पूरा कपाट खोल ले, सिल्वर कलर की, वहाँ पहला देखो चौथा नंबर राइट साइड, तीन ऑरेंज है ना उसके बाजू में, सिल्वर कलर का है, हाँ वो लाना मेरे पास, उसमें इंडेक्स है पूरा चारों ही भागों का, इसमें इंडेक्स मिलेगा, निर्लेपन स्थान तथा दधन निर्लेपन ना, निर्युक्ति निर्दुख निर्लेपन निर्मल निर्ले पहले आएगा निर्लेपन 2.625 दो 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 है का, कौन सा नंबर है आपके पास, दो नंबर है 725 ब निर्लेपन में क्या लिखा है, पर्याप्ति के निर्लेपन स्थान निर्लेपन आहार शरीर इंद्रिय और श्वासोश्वास अपर्याप्तियों की निवृत्ति को निर्वृत्ति चाहिए, निर्लेपन कहते हैं, यानी अपर्याप्तों की रचना को, उसी को निर्लेपन स्थान कहा है, हाँ यानी वहां जो कोई निर्वृत्ति चल रही है, अपर्याप्त जीव है वहां पर, तो वो स्थान की बात होगी, वहां क्या कहा, उसके निर्लेपन स्थान प्रमाण समय प्रबद्ध भी नियम से है, ये दो तीन वाक्यों का अर्थ नहीं समझा, आगे उसका कोई विशेषार्थ है क्या, चूर्णी सूत्र का भावार्थ लिखेंगे, यहाँ पर लिखा है आगे, यहाँ आगे इसी का भावार्थ लिखा है 135 पेज पर, उसमें फिर दोबारा उसको नहीं लिया है, यहाँ लिख के रखते 134 पृष्ठ, आगे बात आएगी कहीं ना कहीं अपने को उत्तर तो मिलेगा, ये निर्लेपन स्थान देखना पड़ेगा फिर, क्या कहते हैं, यानी जो क्षपित कर्मांश की विधि के साथ कर्म स्थिति काल तक नहीं रहेगा, उसका इतना जघन्य प्रदेश सत्कर्म नहीं होगा, ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा तो कितने अधिक होते हैं, तो पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण समय प्रबद्ध अधिक होते हैं, ये बात आई वहां पर, तथा उसके निर्लेपन स्थान प्रमाण समय प्रबद्ध भी नियम से है, निर्लेपन स्थान का जो प्रमाण है, निर्लेपन स्थान का प्रमाण मेरे ख्याल से वो अपर्याप्तियों की पूर्णता होने का ही होगा, अभी उसको जरा फिर से देखना पड़ेगा, तो उतने समय प्रबद्ध भी उसके नियम से है, और बाकी बची कर्म स्थिति में बांधे गए सब समय प्रबोधों के परमाणु जघन्य द्रव्य में है यह सिद्ध हुआ। अब इसको फिर दोबारा जब इसका विशेष स्पष्टीकरण आएगा तब दोबारा याद करेंगे हम इसको। अब आगे बढ़ते हैं। शंका, यदि क्षपित कर्मांश में अल्पतर का काल कर्म स्थिति प्रमाण होता तो यह सब घट सकता था। क्या कहते हैं, अल्पतर काल यानी लगातार घटने का काल, यदि कर्म स्थिति प्रमाण, वो कितना है लगातार घटने का, पल्ले के असंख्या तो होगा, हाँ मैक्सिमम, किंतु ऐसा नहीं है क्योंकि उसका प्रमाण पल्ले के असंख्यातवे भाग है और भुजगार के काल में क्षपित कर्मांश होना संभव नहीं है। भुजगार ने बढ़ता हुआ, क्योंकि भुजगार के काल के भीतर प्रति समय कर्म स्कंद बढ़ता रहता है, अतः उसके क्षपित कर्मांश रूप होने में विरोध आता है। अतः स्वामित्व काल में अल्पतर काल प्रमाण समय प्रबद्धों के ही प्रदेश होने चाहिए, यानी स्वामित्व में जो बताए है प्रदेश के सत्कर्म, वो पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण काल में जो अल्पतर हुआ है उसी के समय प्रबद्ध होने चाहिए, पहले वाले नहीं, ऐसे कहते हैं। समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि क्षपित कर्मांश काल के भीतर भुजगार और अल्पतर दोनों ही काल संभव होने से, क्योंकि पल्ले का असंख्यात भाग लगातार अल्पतर होगा, बीच में भुजगार होगा, फिर अल्पतर हो सकता है।
यहाँ पे जो ये पल्ले का असंख्यात भाग लिया है वहाँ पे तो लगातार अल्पतर
लगातार होगा ना, परंतु वो तो पल्ले का असंख्यात भाग काल बहुत छोटा है और कर्म स्थिति बहुत बड़ी है, तो कर्म स्थिति के भीतर बीच बीच में भुजगार भी हो जाएगा। शुरुआत में पल्ले के असंख्यात भाग काल तक लगातार अल्पतर हुआ, अब बीच में भुजगार भी हो गए, फिर दोबारा अल्पतर भी होगा, यथा संभव जैसे। यहाँ क्या कहते हैं, क्षपित कर्मांश काल के भीतर भुजगार और अल्पतर दोनों ही काल संभव होने से, क्योंकि क्षपित कर्मांश का काल कितना है, कर्म स्थिति प्रमाण, उसमें तो ये कितनी बार हो जाएंगे, क्षपित कर्मांश के काल के कर्म स्थिति प्रमाण होने में कोई विरोध नहीं आता, यानी क्षपित कर्मांशिक का पूरा काल अल्पतर का नहीं है, बीच में भुजगार हो भी जाएंगे, भुजगार भी और अल्पतर भी। शुरुआत में पल्ले के असंख्यात भाग काल तक तो अल्पतर हुआ था, बाद में बीच बीच में भुजगार अल्पतर होते रहेंगे। शायद कहा जाए कि क्षपित कर्मांश रूप भाव का भुजगार काल के साथ विरोध है, सो भी बात नहीं है, यानी क्षपित कर्मांश वाले जो भाव है उसमें भुजगार होता ही नहीं, ऐसा मत कहें, क्योंकि भुजगार के काल से अल्पतर का काल संख्यात गुणा है, अतः भुजगार के काल में जितने द्रव्य का संचय होता है उससे असंख्यात गुणे द्रव्य की अल्पतर काल में निर्जरा हो जाती है।
ये तो रेगुलर भुजगार और अल्पतर का काल बता रहे हैं,
रेगुलर की बात चल रही है,
वो पल्ले का असंख्यात भाग नहीं लिया है यहाँ पे,
पल्ले के असंख्यात भाग बीत जाने के बाद भी भुजगार और अल्पतर में अगर हम कंपेयर करेंगे,
अल्पतर का काल
संख्यात गुना है, अतः क्षपित कर्मांश पने का भुजगार काल के साथ विरोध नहीं है, यानी क्षपित कर्मांश वाला विधि जो चल रही है उसके बीच बीच में भुजगार भी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि होगा ही लगातार, तो अल्पतर इतना लंबे काल तक नहीं चलेगा। वेदना खंड में पल्ले के असंख्यात भाग कम कर्म स्थिति प्रमाण काल तक सूक्ष्म एकेंद्रियों में भ्रमण कराकर फिर त्रसकायिकों में उत्पन्न कराया, ये डिफरेंस हमने देखा था। यहाँ कर्म स्थिति प्रमाण अपने चुन्नी सूत्र में, पूरे कर्म स्थिति प्रमाण सूक्ष्म निगोदिया में वहां रखा है, और यहाँ पर पल्ले के असंख्यात भाग कम, और यहाँ संपूर्ण कर्म स्थिति काल तक भ्रमण कराकर त्रस पर्याय को प्राप्त करा है, यहाँ इन्हें चूर्णी सूत्र में। अतः दोनों सूत्रों में जिस रीति से विरोध न आवे उस रीति से कथन करना चाहिए। आचार्य ऋतिषभ के उपदेश के अनुसार क्षपित कर्मांश का काल कर्म स्थिति प्रमाण है, क्योंकि सूत्र में सूक्ष्म निगोदियों में कर्मस्थिति काल तक रहा ऐसा निर्देश अन्यथा बन नहीं सकता। और भूतबली आचार्य के उपदेश के अनुसार क्षपित कर्मांश का काल पल्ले का असंख्यातवा भाग कम कर्मस्थिति प्रमाण है। इन दोनों उपदेशों में से एक ही उपदेश सत्य होना चाहिए, किंतु उनमें से एक कौन सत्य है यह निश्चय नहीं है, अतः दोनों ही उपदेशों का संग्रह करना चाहिए। अब इस चूर्णी सूत्र का भावार्थ कहते हैं, ये जो हम देखा है क्षपित कर्मांश के बारे में उसी का भावार्थ कहेंगे, वह इस प्रकार है। क्षपित कर्मांश विधि से आकर, विधि कौन सी, वो सूक्ष्म केंद्र में इतने काल तक रहा और उसके ये छह आवास हुए, असंगी पंचेंद्रियों और देवों में उत्पन्न हुआ, वहां देवों में उपशम सम्यक्त को प्राप्त होने के काल में उत्कृष्ट अपूर्वकरण परिणामों के द्वारा गुणश्रेणी निचरा को करके फिर अनिवृत्तिकरण रूप परिणामों के द्वारा भी असंख्यात गुणी श्रेणी के द्वारा कर्मों की निर्जरा करके प्रथमोपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ। हमने देखा था ना प्रथमोपशम सम्यक्त के काल में तीन कर्ण परिणाम जो है उसमें अपूर्व करण से गुणश्रेणी निर्जरा शुरू हो जाती है। पुनः उपशम सम्यक्त के काल में गुण संक्रम के उत्कृष्ट काल के द्वारा, उपशम सम्यक्त के शुरू में गुण संक्रमण होता है, मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति होती है, उसका काल भी छोटा बड़ा हो सकता है, तो वहां उत्कृष्ट बताया उन्होंने कि उपशम सम्यक्त्व के काल में गुण संक्रम के उत्कृष्ट काल के द्वारा सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व को पूर कर फिर वेदक सम्यक्त्व को ग्रहण किया, फिर अनंतानुबंधी चतुष्क का विसर्जन करके 266 सागर काल तक भ्रमण किया, फिर दर्शन मोह के क्षपण काल में जघन्य अपूर्वकरण परिणामों के द्वारा गुणश्रेणी को करके उदयावली के बाहर की मिथ्यात्व की अंतिम फाली को सम्यक मिथ्यात्व में संक्रमण कर तथा दो समय कम आवली प्रमाण गुणश्रेणी गोपुच्छाओं का गालन कर, ये दो समय कम क्यों लिया,
ये तो यहाँ पे उदय तो सम्यक होता है ना,
हाँ, क्योंकि
ये जघन्य अपूर्वकरण परिणामों के द्वारा गुणश्रेणी
जघन्य अपूर्वकरण इसलिए किया कि अभी उसके गुणश्रेणी जो की है, फिर दशम मुख के क्षपण काल में जघन्य अपूर्वकरण परिणामों के द्वारा गुणश्रेणी को करके,
क्योंकि उत्कृष्ट परिणाम के साथ करेगा तो ज्यादा द्रव्य संक्रमित होगा, तो यहाँ पे ये जघन्य परिणाम बताकर क्या उसका फायदा क्या है, क्योंकि अभी तो संक्रमण चालू हो गया है,
हाँ
बराबर है, तो ये जघन्य परिणाम क्यों बताया, ये काल की अपेक्षा बताया,
नहीं देखो
परिणाम
उपशम सम्यक्त्व के काल में गुण संक्रम के उत्कृष्ट काल के द्वारा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व को पूर कर फिर वेदक सम्यक्त्व को ग्रहण किया, फिर अनंतानुबंधी चतुष्क का विसर्जन करके 266 सागर काल तक भ्रमण किया, और फिर दर्शन मोह के क्षपण काल में जघन्य अपूर्वकरण परिणामों के द्वारा गुणश्रेणी को करके उदयावली के बाहर की मिथ्यात्व की अंतिम फाली को सम्यक मिथ्यात्व में संक्रमण कर, अच्छा जो जघन्य परिणामों के द्वारा जो गुणश्रेणी की उसका आयाम लंबा होगा,
अच्छा तो मैक्सिमम द्रव्य गुणश्रेणी में चला
जाएगा, गुणश्रेणी के पर निषेक जो निषेक ज्यादा हो गए पर निषेक परमाणु कम मिलेंगे, जघन्य परिणाम है,
अच्छा लास्ट समय वाला हमको देखते हैं इसीलिए जघन्य,
देखो जघन्य परिणाम है तो जघन्य परिणाम में जो गुणश्रेणी भी लंबी होगी,
हाँ।
और उदयावली में भी माल कम दिया जाएगा, जघन्य परिणाम है तो उसका अपकर्षण भी कम द्रव्य का होगा। अपकर्षण होके जो उदयावली में दिया जाएगा वही तो लास्ट में उदय में आएगा। अपकर्षित द्रव्य अभी ज्यादा मिलेगा तो नीचे के निषेक भी बड़े बड़े होंगे, इसलिए इसको जघन्य परिणाम का। तथा दो समय कम आवली प्रमाण गुण श्रेणी, दो समय कम आवली लिखा ना, गुण श्रेणी पुच्छाओं का गालन कर। क्यों? देखो अभी जब अंतिम स्थिति कांड घात हुआ तो कितने निषेक बच गए, आवली माइनस एक समय, तो भी अंतिम निषेक का नंबर आने के लिए कितना काल जाएगा, आवली माइनस दो समय। ये दो समय का मावली क्यों कहा, अंतिम निषेक को रखना है, वो भी चला जाएगा तो एक समय का मावली कहते हम। गालन कर देखो, दो समय कम आवली प्रमाण गुण श्रेणी गोपुच्छाओं का गालन कर। कितने गोपुच्छ है, एक समय कम आवली, उसमें दो समय कम आवली प्रमाण गोपुच्छ गए तो एक निषेक बाकी रहा, यही बताना चाहते। जब दो समय काल वाली एक निषेक स्थिति शेष रहती है तब मिथ्यात्व का जघन्य प्रदेश सत्कर्म होता है, क्योंकि जघन्य प्रदेश सत्कर्म के स्वामित्व के अंतिम समय में कर्म स्थिति के प्रथम समय से लेकर पल्योपम के असंख्यात भाग अधिक 266 सागर प्रमाण समय प्रबद्धों का एक भी परमाणु नहीं पाया जाता। यही बात बताए थे ना,
वहाँ पे बंदी नहीं है।
तथा विवक्षित एक निषेक की स्थिति को छोड़कर, अभी जो हमने अंतिम जो स्थिति देखी है उसको छोड़कर शेष निषेकों की स्थितियों में स्थित मिथ्यात्व के सब प्रदेशों का पर प्रकृति रूप संक्रमण के द्वारा व अधस्थिति गलना के द्वारा विनाश हो जाता है। अब यहाँ मिथ्यात्व का एक ही निषेक बाकी है, बाकी सबका मिथ्यात्व समय मिथ्यात्व टर्न हो गया है और बाकी तो पहले अधोगलना के द्वारा गलित हो चुके हैं। विशेषार्थ, पहले उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म को बतलाते हुए गुणित कर्मांश की सामग्री और प्रकार बतलाए हैं, अब जघन्य प्रदेश सत्कर्म को बतलाते हुए क्षपित कर्मांश का प्रकार बतलाया है कि किस तरह कोई जीव कर्मों का क्षपण करके मिथ्यात्व के जघन्य प्रदेश सत्कर्म का स्वामी हो सकता है। उत्कृष्ट संचय की पहले जो सामग्री कही है उससे बिल्कुल विपरीत जघन्य प्रदेश सत्कर्म की सामग्री है। प्रदेश सत्कर्म हुआ, सत्कर्म 100 करना दूसरा वाला, यानी गुणित कर्मांशिक की अपेक्षा क्षपित कर्मांशिक में उल्टी बातें होगी। तो कहते उसकी प्रदेश सत्कर्म की सामग्री जघन्य की विपरीत है, उसमें यही ध्यान रखा गया है कि किस प्रकार कर्मों का अधिक संचय नहीं हो पाए, यानी कम ग्रहण करे और अधिक निर्जरा करे। इसलिए सूक्ष्म एकेंद्रियों में उत्पन्न कराकर वहां अपर्याप्त के भव अधिक बतलाए हैं और योग स्थान भी जघन्य ही बतलाया है, तथा आयुबंध उत्कृष्ट योग के द्वारा बतलाया है, इसी प्रकार आगे भी समझना। आगे अब इस जघन्य द्रव्य में प्रकृति गोपुच्छा का प्रमाण बतलाते हैं, वही इस प्रकार है। एकेंद्रिय संबंधी एक समय प्रबद्ध को डेढ़ गुणहानि से गुणा करने पर एकेंद्रियों में संचित हुए द्रव्य का प्रमाण होता है। क्या कहते हैं, एकेंद्रिय संबंधी जो समय प्रबद्ध है, एकेंद्रिय में सत्ता में कितना द्रव्य पड़ा है, तो समय प्रबद्ध गुणा डेढ़ गुणहानि। तो कौन सा समय प्रबद्ध, एकेंद्रियों के योग्य जो समय प्रबद्ध है उसकी बात करते हैं। उस संचित द्रव्य में अंतर्मूर्त से भाजित अपकर्षण उत्कर्षण भागहार से भाग देने पर उत्कर्षित द्रव्य का प्रमाण होता है। उत्कर्षित द्रव्य कितना होगा? तो जो अपकर्षण उत्कर्षण का भाग देने पर जो होता है उतना होगा। एक समय में, दो समय में, कब तक चलेगा? तो अंतर्मूर्त प्रमाण चलेगा, इसलिए अंतर्मूर्त से भाजित कर दिया। तो शंकाकार पूछता है, उत्कर्षित द्रव्य के बिना एक इंद्रियों में संचित हुए द्रव्य के साथ दो छासर सागर तक भ्रमण क्यों नहीं कराया जाता है? ये पहले द्रव्य को उत्कर्षित करके बाद में वो छासर सागर तक क्यों घुमाया है? नहीं, क्योंकि कुछ कम एक सागर प्रमाण स्थिति वाले मिथ्यात्व के परमाणुओं के दो छासर सागर तक ठहरने में विरोध आता है, क्योंकि यहाँ जो नए बंधक किए हैं वो कितना किया है?
एक सागर वाला।
कुछ कम एक सागर, तो इतने ही, वो पहले के कुछ नहीं रहे और इतने ही रहे, तो इसके साथ दो छासर सागर काल तक वो नहीं रुक सकता। फिर अंत कोड़ाकुड़ी के भीतर जो नाना गुणहानी शलाकाय है, ये विरलन वगैरह का कल देखना है क्या? कि इसको पढ़ लेते हैं, फिर कल दोबारा ले लेंगे। देखो क्या कहते हैं, फिर अंत कोड़ाकुड़ी के भीतर जो नाना गुणहानी शलाकाएं हैं उनका विरलन करके और उन विरलन अंकों को द्विगुणित करके परस्पर गुणा करने से जो राशि उत्पन्न हो, इसको क्या कहते हैं? अन्योन्य व्यस्त राशि। शाम को यही विषय चल रहा है अपना दोनों जगह। नाना गुणहानी प्रमाण दो संख्या को लिखकर आपस में गुणा करो, ये विरलित वगैरह वो भूल जाओ, उतनी बार दो लिखकर आपस में गुणा करना, उसमें से एक कम करो, यानी अन्यन्य अभ्यस्त राशि माइनस एक, और दो छासर सागर कम अंत कोड़ाकुड़ी सागर के भीतर जो नाना गुणहानी शलाकाए हो उनके विरल अंकों को द्विगुणित करके परस्पर गुणा करने से जो जो राशि उत्पन्न हो, एक कम करके उस राशि से, पहले एक राशि बना दी थी वहाँ एक सागर कम वाले अन्य बेस्त राशि ली थी, अब यहाँ दो छासर सागर कम अंत कोड़ाकुड़ी वाली जो नाना गुणा निशला का है उसके द्वारा जो अन्य बेस्त राशि निकाली, तो अब इस नई राशि से पहले वाली राशि को भाग देने पर जो लब्ध आवे उससे उत्कर्षित द्रव्य में भाग देने पर दो छासर सागर में गलित से बाकी बचे द्रव्य का प्रमाण होता है। फिर उस द्रव्य में डेढ़ गुणानी से भाग देने पर प्रकृति गोपुच्छा आती है। प्रकृति गोपुच्छा का अर्थ क्या है? मिथ्यात्व की जो पहली एक पहली स्थिति जो है उसमें कितने परमाणु हैं, उसका प्रमाण निकलता है।
एक निश्चय वाली बात है।
हाँ, देखो कभी भी सत्ता में कितना द्रव्य है, डेढ़ गुणहानी से गुणित समय प्रबंध, जितना द्रव्य है उसको अगर हम पहले निश्चय का द्रव्य निकालना है तो कैसे करता है? सर्व द्रव्य को डेढ़ गुणहानी से भाग देते हैं तो पहला निश्चय निकलता है। यही बात यहाँ, एक इंद्रिय संबंधी जो डेढ़ गुणहानि है उससे उस द्रव्य को भाग देंगे सब द्रव्य, तो प्रकृति को पूछा आती है ने, एक निषेक में कितने परमाणु हैं उसका प्रमाण आएगा।
दो गुणानी से भागेंगे तो पहला निषेक आएगा कि डेढ़ गुणानी से?
नहीं,
इसे तो दो गुणानी से भागते तो पहला निषेक,
पहले निषेक को दो गुणानी से भाग देते तो छह आता है। इसको फिर दोबारा लेंगे कल। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवानी मस्तक नो सदा देत होड़ो। मयंक भाई।